अभिमान रात को घर लौट चुका था। उसने आकाश को किसी के साथ कॉल पर बात करते हुए सुना, साथ ही उसके चेहरे के भावों से लग रहा था कि वो काफी परेशान है। अभिमान छिपकर आकाश की बात सुनने लगा। वहीं आकाश कॉल पर तृप्ति से बात कर रहा था। तृप्ति से उसे पता चला कि आशिका मिल गई है और वो अभिमान के पास ही है। ऐसे में अभिमान को एक मुश्किल फैसला लेना था। आकाश अभिमान को आशी से शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था और इसकी एक वजह तृप्ति थी, मगर आकाश आशिका के लिए कुछ भी कर सकता था, तो इसलिए उसने यही सोचा कि वो अभिमान को शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा, बदले में उसे आशिका को उसे लौटाना होगा। अभिमान जाने लगा, तभी आकाश ने उसे रोका और यही कहा कि उसे आशी से शादी करने की जरूरत नहीं है, बदले में वो बस अभिमान के पास मौजूद उसकी चीज को लौटा दे। अभिमान ने गहरी सांस ली और तंज भरे लहजे में कहा, मेरे पास आपकी कोई चीज नहीं है सिवाय कुछ शेयर्स के, और वो मैं आपको नहीं लौटाने वाला हूँ। मुझे चाहिए भी नहीं। तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताओ, मुझे कमी नहीं है। मुझे पैसे नहीं, कुछ और चाहिए, आकाश ने सीधे सीधे कहा। फिर मेरे पास आपका ऐसा क्या है, अभिमान ने हैरानी से पूछा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था आखिर आकाश अपनी किस चीज की बात कर रहा है। आशिका सिंघानिया, आकाश बोला। आशिका का नाम सुनकर अभिमान को झटका सा लगा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले आकाश आगे बोला, तुम्हारी कंपनी में एक आशिका सिंघानिया नाम की लड़की काम करती है, मुझे वो लड़की किसी भी हाल में चाहिए। और आपको वो क्यों चाहिए, क्या उसने आपका कुछ बिगाड़ा है, अभिमान ने पूछा। कुछ नहीं बिगाड़ा है, बस मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ। अब ये मत कहना कि मुझे तुम्हारी माँ के साथ बंद कर रहना पड़ेगा, मैं बहुत पहले उसे छोड़ चुका हूँ और उसके बाद मेरी जिंदगी में काफ़ी सारी लड़कियाँ आ चुकी हैं। चलो मेन टू मेन बात करते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि किसी के साथ ज़बरदस्ती शादी में रहना बुरा होता है, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, बस बदले में मुझे आशिका सिंघानिया लौटा दो। आकाश को किसी चीज़ का डर नहीं था, इसलिए उसे अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातों को छिपाने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसने सीधे सीधे अभिमान को सब बता दिया कि वो आशिका से शादी करना चाहता है। अभिमान सकते में आ गया था। वो अभी भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। आशिका ने अनजाने में उसे ही बताया था कि कोई उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, तो वहीं अचानक से सेलिना उसके सामने आ गई थी। सेलिना भी बार बार शादी का नाम लेकर आशिका को वहां से ले जाना चाहती थी। अभिमान इस वक्त यही सोच रहा था, तो क्या आकाश वो आदमी था जिससे बचकर आशिका इतनी दूर आ गई थी? वो आकाश से शादी करने वाली लड़की को ढूंढ रहा था ताकि उसे अपनी बात मनवा सके। अभिमान को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और आशिका उसके साथ ही थी। ऊपर से अब तो आकाश ने खुद से ये प्रस्ताव रखा था, अगर वो आशिका को उसे सौंप दे तो अभिमान को आशी से शादी नहीं करनी पड़ेगी। अभिमान को बस आशिका को आकाश के पास लेकर आना था, लेकिन ये ख्याल भर उसके दिल को भारी कर रहा था। जब निशा के सामने आकाश की सच्चाई आ गई थी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किसी से भी शादी करे, पर आकाश और आशिका को साथ में सोचकर ही उसके सीने में दर्द होने लगा था। क्या हुआ, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़ी मुसीबत से अलग करने का प्रस्ताव रख रहा हूँ और तुम यहाँ सोच में डूबे हो। तुम्हें उस लड़की से तलाक चाहिए तो मैं दिलवाऊंगा, आकाश ने सख्त आवाज में कहा। वो ना जाने क्यों आशिका के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। वहीं आकाश की आवाज़ सुनकर अभिमान का ध्यान टूटा। उसके चेहरे के भाव बेहद सर्द थे। अभिमान आकाश को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। सोचिए कभी मत, मैं आशिका को कभी आपको नहीं देने वाला हूँ, अभिमान ने बेहद सर्द आवाज में कहा। उसके इनकार करने पर भी आकाश जोर से हंसा और फिर बोला, क्या हुआ, कहीं दिल तो नहीं आ गया है उस पर? आ भी सकता है, वो है ही इतनी अलग। मैं उससे एक दिल के चलते शादी करने वाला था, सोचा था दिल बहलाते ही उसे छोड़ दूंगा, पर वो जिस तरह से जितना मुझसे दूर भाग रही है उतना ही मेरे दिल में उसे पाने की चाहत बढ़ती जा रही है। सच कहूँ तो मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि मैं पूरी ज़िंदगी एक औरत के साथ रह सकता हूँ, लेकिन आशिका सिंघानिया अलग है। आखिरकार मुझे वो लड़की मिल गई है जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। जैसे जैसे आकाश बोल रहा था अभिमान के दिल पर छुरियाँ सी चल रही थी। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई अभिमान ने गुस्से में आकाश की कॉलर पकड़ ली थी। वो सिर्फ मेरी है, अचानक अभिमान के मुंह से निकला, हालांकि बोलने के बाद उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई थीं। काफ़ी दिनों से आशिका उसके साथ रह रही थी। आशिका का बर्ताव काफ़ी ठंडा था, उसके बावजूद अभिमान को पता तक नहीं लगा कि कब आशिका ने उसके दिल में जगह बना ली है। आकाश ने अभिमान का हाथ झटक कर उसे खुद से दूर किया और सिर हिलाकर कहा, ओ सच में, तुम्हारी शादी 5 साल पहले हो गई है और अगले एक हफ्ते में सार्वजनिक रूप से भी हो जाएगी। तुम्हारी शादी रोकने की सिर्फ एक शर्त है कि तुम आशिका को मुझे लौटा दो, जो तुम करने के लिए तैयार नहीं हो। कहाँ लेकर जाओगे उसे? एक हफ्ते बाद उसे मेरे पास ही आना है। ये जो आप अपने चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा पहनकर घूमते हो, मैं पूरे परिवार के सामने वो मुखौटा उतार दूंगा। आशिका खुद सबके सामने आकर आपकी सच्चाई बताएगी, अभिमान गुस्से में तेज आवाज में बोला। आकाश को उसकी धमकी और बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बेपरवाही से बोला, जो बनता है कर लो, कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे मुझे इसकी परवाह नहीं है। जिस दिन वो लड़की मेरे सामने आई, मैं सबके सामने उससे शादी करूंगा। आकाश ने इतना ही कहा और वहां से चला गया था। वहीं अभिमान ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर दे मारा। यकीन नहीं होता, ये इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है कि सिर्फ मेरी जिंदगी ही नहीं बल्कि आशिका की जिंदगी भी खराब करना चाहता है। अब मुझे सब समझ आ रहा है, उसने यही बताया था, अचानक से शादी नहीं हो पाई थी क्योंकि आशिका भाग गई होगी, इस वजह से शादी नहीं हो पाई। ये घटिया इंसान उसके पीछे यहां तक आ गया और इसकी फैमिली भी इसका साथ दे रही है। मेरे होते हुए मैं आशिका को इसके गलत मंसूबे का शिकार नहीं होने दूंगा, बोला। अभिमान आशिका को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं ले सकता था, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर आशिका के पास जा रहा था। तो वहीं अभिमान नहीं जानता था कि अब आकाश की उसके ऊपर पूरी नजर है। दूसरी तरफ आशी अपने कमरे में परेशान बैठी थी। जैसे ही उसे ये विचार आया कि आशिका सिंघानिया ही अभिमान की पत्नी हो सकती है, उसके चेहरे का रंग डर से पीला पड़ गया था। आशी ने अपना दूसरा नकली पहचान पत्र निकाला, उसमें मौजूद पहचान को उसने खोजा और उसकी विस्तृत जानकारी निकाली, तो सच में आशिका का चेहरा आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, मेरे साथ अचानक इतना बुरा कैसे हो सकता है। जिस आशिका सिंघानिया की पहचान मुझे न सिर्फ सिंघानिया हवेली में मिली, वही आशिका अभिमान की पत्नी है और उसी की ही पहचान के चलते मैं अभिमान की पत्नी बन गई हूँ। वो लड़की अभिमान के पास है और उसे गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए कि वही उसकी असली पत्नी है, आशी ने घबरा कर कहा। इस वक्त उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। रात काफी हो जाने के बावजूद आशी ने अभिमान को कॉल किया ताकि उसे प्यार से बात करके उसे मना सके, लेकिन अभिमान ने हमेशा की तरह उसका कॉल रिसीव नहीं किया था। तृप्ति के उसके जिंदगी में वापस आने के साथ ही आशी की जिंदगी में मुसीबतें लौट आई थीं। अगर गलती से भी सिंघानिया परिवार और अभिमान को आशी की सच्चाई के बारे में पता चलता तो वो दिन दूर नहीं था जब आशी को फिर से तृप्ति के पास जाना पड़ता और उसकी पुरानी जिंदगी वापस लौट आती। सिंघानिया हवेली में रात के खाने के बाद राधिका ने जबरदस्ती ईशिका को अभिमन्यु के साथ गार्डन एरिया में भेज दिया था ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात कर सकें।
गार्डन एरिया में ईशिका और अभिमन्यु टहल रहे थे। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो अभिमन्यु को बहुत चुभ रही थी। ऐसा वक्त कभी नहीं आया जब अभिमन्यु और ईशिका एक दूसरे के साथ हों और उन दोनों के बीच इस तरह चुप्पी छाई रहे। अभिमन्यु से आखिर रहा नहीं गया तो वो गहरी सांस लेकर बोला, मिस सिंघानिया, आजकल आप क्या कर रही हैं? मुझे मिसेस सिंघानिया से पता चला कि आप काफी इंटेलिजेंट हैं, तो क्या आप राजवंश एम्पायर के लिए काम करेंगी? मैंने राजवंश एम्पायर का काफी नाम सुना है, पर मेरी तो अभी एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई और वहां काम करने के लिए काफी हायर डिग्री का होना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि राजवंश एम्पायर में मेरे लिए कोई काम होगा मिस्टर राजवंश, ईशिका ने काफी सिंपली से उसे मना कर दिया था। वहीं अभिमन्यु के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट थी। उसने मन ही मन कहा, अपनी पहचान छिपाने में तुम काफी माहिर हो ईशिका सिन्हानिया, तुम्हें डिग्री और किसी हायर एजुकेशन की क्या जरूरत है? तुम डॉक्टर मर्चेंट और डॉक्टर अनामिका के नाम से इतनी बड़ी रिसर्चर हो, ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें सब कुछ याद आ जाए? या तुम कम से कम मेरे साथ नॉर्मली बिहेव करो, तुम तो ठीक से मुझसे बात तक नहीं कर रही हो। अभिमन्यु इस वक्त यही सोच रहा था कि कैसे ईशिका को खुद के साथ नॉर्मल किया जाए, तो वहीं ईशिका चलते हुए चुपके से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। राधिका ने ईशिका के सामने अभिमन्यु को अपने बिजनेस पार्टनर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया था। हालांकि ईशिका ने उसके बारे में कोई सर्च नहीं की थी, लेकिन नक्श और राजवंश एम्पायर के बारे में वो पहले से जानती थी। ईशिका ने नजरें तिरछी करके अभिमन्यु की तरफ देखा और मन ही मन बोली, नक्श ने सबके सामने ऐसे ही जाहिर किया था कि फ्यूचर में राजवंश एम्पायर का सीईओ वही होने वाला है। नक्श के पहचान पता चलने के बाद आयशा आजकल उसे इम्प्रेस करने में लगी हुई है, लेकिन अगर आयशा को मिस्टर राजवंश के बारे में पता चला तो क्या वो नक्श को छोड़कर उनके पीछे जाएगी? नहीं, मिस्टर राजवंश आयशा जैसी लड़की डिजर्व नहीं करते हैं, पर ये तो पहले से मैरिड है, लेकिन इन्होंने यही कहा था कि मेरी कोई वाइफ नहीं है। ओ गॉड, मैं इन्हें लेकर इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ? मैंने इन्हें हॉस्पिटल में पहली बार देखा था, फिर भी इनका एहसास और ये खुशबू मुझे जानी पहचानी से लगती है। ईशिका ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और ये याद करने की कोशिश करने लगी कि वो अभिमन्यु से कहाँ मिली थी। उसकी नज़रों के सामने बहुत सारे दृश्य घूम गए थे जहाँ वो पहले भी अभिमन्यु से मिल चुकी थी। ईशिका के सर में हल्का सा दर्द हुआ तो उसने जल्दी से आंखें खोली। उसे इस तरह से अनकंफर्टेबल देखकर अभिमन्यु ने उससे पूछा, मिस सिंघानिया, क्या आप ठीक हैं? तब ईशिका ने उससे पूछा, मिस्टर राजवंश, क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? चलो, तुम्हें एहसास तो हुआ कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, वरना मुझे लगा एक्सीडेंट के बाद तो मुझे भूल सी गई हो, अभिमन्यु बोला। उसके चेहरे पर हल्की लेकिन कॉन्फिडेंट स्माइल थी। ईशिका उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। अगर वो अभिमन्यु से पहले मिल चुकी थी तो अब तक उसे याद क्यों नहीं था? तो वहीं अभिमन्यु ने भी नया तरीका सोच लिया था कि उसे किस तरह ईशिका के सामने खुद को इंट्रोड्यूस कराना है, ताकि वो उसके साथ अजनबी जैसा व्यवहार ना करे।